जिन महाराज ने तारापरी को स्पष्ट कह दिया था कि अमन और मान की रू एक है लेकिन जिस्म अलग अलग, सो तुम्हें उन दोनों से विवाह करना होगा और उन दोनों को समान रूप से प्यार देना होगा, और तुम तीनों के मिलन से जो औलाद पैदा होगी वही सबका रक्षक होगा। परीलोक के साथ साथ वो धरती लोक की भी रक्षा करेगा। जिन महाराज ने तारापरी को दो रास्ते बताए थे और अब ये तारापरी को तय करना था कि वो कौन सा रास्ता चुनेगी। उन दो रास्तों में से पहला रास्ता था, या तो तारापरी हार मानकर परीलोक लौट जाएं और उस राक्षस के जुल्म और सितम सहती रहें, और दूसरा रास्ता था या तो वो उन दोनों को, यानी अमन सिंह राठौर और मान सिंह राठौर को दिल से कबूल कर ले और आने वाली चुनौतियों से सामना करे, क्योंकि पृथ्वीलोक पर काफ़ी सारी चुनौतियां आने वाली थीं, क्योंकि अगर नेक दिल इंसान का बच्चा पैदा होगा तो वो काली शक्तियों के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा होगा। इसलिए काली ताकतें पूरी कोशिश करेंगी कि अमन की शादी ना हो और उसकी कोई औलाद पैदा ना हो। जिन महाराज ने तारापरी को अच्छे से समझा दिया था, अब फैसला तारापरी को करना था। तारापरी बरगद के पेड़ के पास से उठकर उसी बगीचे के सरोवर के पास बैठ गई थी जिसमें उसने स्नान किया था, और वो उदास सी सरोवर में तैरती रंग बिरंगी मछलियों को देख रही थी और सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। तारापरी काफ़ी उलझन में थी। एक तरफ वो भयानक राक्षस था तो दूसरी तरफ दो भाई थे। वो भला दो दो से कैसे विवाह कर सकती थी? अगर पहले वाली तारापरी होती जो परीलोक से आई थी तो वो दोनों भाइयों से विवाह करने के लिए कब की तैयार हो चुकी होती, लेकिन अब बात अलग थी। अब तारापरी के अंदर इंसानी जज्बात थे, इंसानों की तरह सोचने समझने की शक्ति थी, क्योंकि धरा की सोच समझ उसने अपने अंदर समा रखी थी। इसी उधेड़ बुन में गुम तारापरी की आंखों से कुछ आंसू उस सरोवर में गिर जाते हैं, और अचानक तारापरी के आंसू गिरते ही उस सरोवर में एक उबाल सा उमड़ पड़ता है और बुलबुले उठने लगते हैं। तारापरी हैरत से पानी में आई तब्दीली को देख रही थी, और तारापरी के देखते ही देखते वो बुलबुले फुव्वारों में बदल गए थे, और फुव्वारे एक बड़े ही खूबसूरत जलपरी में बदल गए। तारापरी हैरानी से उस जलपरी को देखने लगी थी जिसका पेट से नीचे का सारा हिस्सा मछली जैसा था और ऊपर से वो इंसानी शक्ल में थी। कौन हो तुम? तारापरी ने हैरानी से पूछा। मेरा नाम मयूरी है, वो जलपरी ने कहा, और मैं एक जलपरी हूँ। मैं यहाँ आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। तारापरी, आपकी आंखों से निकले हुए आंसुओं ने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया है। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, और इसी से खुश होकर मैं आपकी कोई एक इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। सो आप बताइए, क्या मांगना चाहती हैं आप? तारापरी हैरानी से उसे देख रही थी और बोली, तुम एक परी की इच्छा पूरी करना चाहती हो, और तुम्हें कैसे पता मेरा नाम तारा है और मैं एक परी हूँ? तारापरी जलपरी ने कहा, मैं पिछले 100 वर्षों से यहाँ कैद हूँ, और मुझे किसी और ने नहीं, आपने कैद किया था और कहा था कि जब कभी आपको परी का रूप मिलेगा तब आप यहाँ आओगे, और जब मेरे उदासी में आंसू निकलेंगे और उसकी एक बूंद भी तुम पर पड़ेगी तो तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। पिछले जन्म में आप एक बड़े ही तपस्वी ऋषि की बेटी थी और आपकी शादी उस वक्त के एक जांबाज सेनापति से हुई थी। और अभी जलपरी कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन तारापरी ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया, क्योंकि ये पिछले जन्म वाली बात दूसरी बार उसके सामने आई थी। तब भी तारापरी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, हालांकि अपने पुतले देखने के बाद भी उसने इग्नोर कर दिया था। और अब जलपरी के मुंह से फिर से पिछले जन्म की बात सुनकर तारापरी को उलझन हो रही थी, क्योंकि वो वैसे ही अपनी जिंदगी में उलझी हुई थी, इसीलिए वो और उलझन नहीं पालना चाहती थी। देखिए जलपरी मयूरी, उसने कहा, मुझे पिछला जन्म, अगला जन्म, इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पिछले जन्म के बारे में जानने से ज्यादा क्या हो जाएगा? उसे एक कहानी की तरह सुन लूंगी। फिर क्या? कुछ नहीं ना, मुझे पिछले जन्म के बारे में कुछ भी नहीं जानना है। अगर मुझे जानना हुआ तो मैं अपने बलबूते पर जान सकती हूँ। तारापरी के अंदर अब इंसानी दिमाग था जिसने तारापरी को अगला जन्म, पिछला जन्म ये सब देखते हुए भी नकार दिया था। इसीलिए तारापरी ने जलपरी से कहा था कि उसका पिछला जन्म क्या था क्या नहीं वो खुद पता कर लेगी। अभी तो फिलहाल वो अपनी इन उलझनों से निकलना चाहती है और कुछ नहीं सोचना चाहती है। जलपरी ने तारापरी की बात सुनने के बाद कहा था, ठीक है, अगर आप नहीं जानना चाहती तो मत जानिए, लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगी, एक पल ऐसा आएगा जब आपको अपने जन्म के बारे में सब कुछ जानना होगा। फिर जलपरी बोली थी, तारापरी, आप मुझे बताइए, ऐसी कौन सी इच्छा है जो आप पूरी कराना चाहती हैं? आप अपनी कोई भी एक इच्छा बताइए, मैं उसे जरूर पूरी करूंगी। तारापरी जलपरी की बात सुनकर सोचने लगी, मैं खुद एक परी हूँ जिसके पास असीमित शक्तियाँ हैं, लेकिन मैं अपनी शक्तियों का खुद के लिए प्रयोग नहीं कर सकती हूँ। एक समय था जब मैं लोगों की विश पूरी किया करती थी, और आज देखो, एक मामूली सी जलपरी मेरी इच्छा पूरी करने की बात कह रही थी। तारापरी बड़े ही घमंड से ये सब सोच रही थी और जलपरी से कोई इच्छा मांगना उसे काफी बुरा लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसके पास तो खुद इतनी शक्तियां हैं, तो वो किसी से कोई वरदान या इच्छा पूरी कराए। वैसे भी वो जिस सिचुएशन में है उसमें तो कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता था, सब कुछ उसे ही करना था। तारापरी को इस तरह से सोच में डूबा देख जलपरी ने कहा, क्या हुआ तारापरी, आपको क्या कुछ नहीं चाहिए? देखो मयूरी, तब तारापरी ने कहा, जो भी नाम है तुम्हारा, मुझे अभी तुमसे कोई इच्छा या वरदान नहीं चाहिए। तारापरी की बात सुनकर जलपरी मुस्कुराने लगी और बोली, ठीक है तारापरी, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन मैं आपको फिर भी कुछ ना कुछ देना चाहूंगी, चाहे आपकी मर्जी हो या ना हो। ऐसा कहते ही जलपरी आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगी थी और जैसे ही उसने आंखें खोली उसके हाथ में एक बड़ी ही प्यारी खूबसूरत छोटी सी मछली थी। तारापरी जलपरी के हाथ में मछली को देखकर हैरान रह गई और कहने लगी, ये मछली क्यों लेकर आई हो? शायद तुम नहीं जानती हो मैं मछली नहीं खाती हूँ। जलपरी तारापरी की बात सुनकर मुस्कुराने लगी और बोली, नहीं नहीं तारापरी, ये मछली खाने के लिए नहीं है, ये एक जादुई मछली है जो आपकी इन चुनौतियों में आपकी सहायता करेगी। जो भी काम आप इस मछली को करने को दोगी ये उसे पल भर में ही कर देगी। तारापरी जलपरी की बात सुनकर हैरान रह गई थी। उसे तो अपनी शक्तियों पर घमंड आ रहा था, लेकिन वो ये भूल चुकी थी कि वो अपनी शक्तियाँ अपने कामों के लिए प्रयोग नहीं कर सकती है, और अभी तक सोनल पर ही उसकी मदद कर रही थी। इतना ही नहीं, वो अपनी शक्ति के द्वारा अदृश्य भी नहीं हो सकती थी, उसे अदृश्य होने के लिए भी बौने की सफेद मोतियों की जरूरत पड़ती थी। तारापरी को जहाँ घमंड आ रहा था वहाँ एक ही पल में उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो जलपरी से कहने लगी थी, हे जलपरी मुझे माफ कर दो, मुझ में शायद ज्यादा शक्ति होने का घमंड आ गया था, इसीलिए मैं अपने घमंड में चूर थी जो तुमसे सही ढंग से बात भी नहीं कर पाई, लेकिन तुमने बिना मेरी इच्छा जाने मेरे मन की इच्छा पूरी कर दी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जलपरी मुस्कुराई और कहने लगी, आप अपनी अमानत संभालिए, सोनल परी के जाने के बाद ये नन्ही जलपरी आपकी मदद करेगी, जब भी आपको किसी चीज की जरूरत होगी वही ये आपकी सहायता करेगी।
जलपरी तारापरी को वो मछली देकर अंतर्ध्यान हो गई थी और जलपरी से बात करने के बाद तारापरी ने सोच लिया था कि अब उसे क्या करना था। उसने उस मछली को अपने लॉकेट में पहन लिया और चल पड़ी थी वो अमन के बंगले की ओर। जैसे ही तारापरी बगीचे से निकलने लगी तब वो किसी से टकरा गई। वो कोई और नहीं बल्कि माली काला थे। माली काका तारापरी को देखते ही रो पड़े और बोलने लगे, कहाँ चली गई थी तुम बेटा, हमने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था। तारापरी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली थी, माली काका कभी कभी कुछ सवालों के जवाब लेने के लिए गायब होना पड़ता है, बस ये समझ लीजिए अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मैं गायब हो गई थी। माली काला मुस्कुराए और बोले, आओ मेरे साथ। माली काला तारापरी को वापस उस बरगद के पेड़ के नीचे ले गए और बोले, आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। तारापरी ने बरगद के पेड़ के नीचे जो तना था उसकी ओर इशारा करके कहने लगे, बेटा ये जगह देख रहे हो, इस पर जो उभार सा है, यहाँ इस जगह मेरी पत्नी दफन है जो मरकर भी मरी नहीं है। तारापरी आश्चर्य से माली काला की ओर देखने लगी और बोली, ये आप क्या कह रहे हैं, आपकी पत्नी और यहाँ? हाँ बेटा मेरी पत्नी, तुमने कहा था ना जिंदगी के पास कभी कभी कुछ सवालों के जवाब नहीं होते, मेरी पत्नी कोई आम औरत नहीं थी, मेरी पत्नी एक जिन थी। जैसे ही तारापरी ने ये सुना उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थीं। आज से ठीक 40 साल पहले इसी बगीचे में वो मुझे मिली थी। उस वक्त मैं एक व्यापारी था जो इस बगीचे को खरीदने के इरादे से यहाँ आया था, और जब मैंने उसे पहली बार यहाँ इस बगीचे के सरोवर में देखा था और उसे देखते ही मैं अपना दिल हार बैठा था। जब मैंने उसे बताया कि मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम जानती हो उसने उसी वक्त मुझे सब कुछ बता दिया था कि वो कोई आम इंसान नहीं है बल्कि एक जिन है, और एक इंसान और जिन का मेल भला कैसे हो सकता था, लेकिन मैं नहीं माना था और मैंने उसकी खुशामद करनी शुरू कर दी थी। जब से उसको देखा था मुझे कहीं भी चैन नहीं मिला था, और जब मैंने हार कर खाना पीना बंद कर दिया था और मैं मरने की कगार पर जा पहुंचा तब उसे मुझ पर दया आ गई और वो मुझसे विवाह करने को तैयार हो गई थी।